हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाशिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुणबिंबफल दरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवी पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धरमाधवेति बर्हापीरं नटवर वपू कर्णीयो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यं रन्ध्राण वेणुं अधरसुधया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति अहो बकियं स्तनकालकूटं जिंघासयापा ययदप्यसात्वी लेभी गतिं धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति गिरं।
यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं।
ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। उद्धव जी विदुर जी को भगवान की समस्त लीलाओं के विषय में बता रहे हैं। वृंदावन के बाहर भगवान ने क्या क्या लीलाएं की उनके विषय में पढ़ते हुए हमने सुना। किस तरह भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ, नकनी जी की कन्या के साथ, 16,108 पटरानियों के साथ किस प्रकार से विवाह किया। उसके उपरांत धरती का बोझ हल्का करने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया और पुनः यदुवंशियों के यहाँ भौतिक जगत से उनको पुनः अपने धाम ले जाने के लिए एक अलग से लीला रची, जिसमें समस्त यदुवंशी ही आपस में लड़कर इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए। और उसके उपरांत उद्धव जी बताते हैं कि इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शन करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो भगवान जो है वो सबके लिए करुणा है, करुणा के सागर है, परंतु भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं, क्योंकि इसी से सबका कल्याण होगा। महाराज युधिष्ठिर के राजा बनने से केवल उनका कल्याण नहीं परंतु समग्र सृष्टि का कल्याण होगा। इसीलिए भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को राज प्रदान किया, राजा बनाया। और एक बहुत ही अद्भुत घटना का वर्णन करते हुए यहाँ विदुर जी कहते हैं, उत्तरायाम धृतम प्रोवर पुरो वशम साध्वभिमुन्युना सवै द्रोण्यस्त्रय समलो।
हमको लगता है कि केवल परीक्षित महाराज के घर जाके गर्भ में भगवान ने रक्षा की। आज तक यही बात बोली जाती है ना कथाओं में, ये परीक्षित महाराज वो है जिनकी रक्षा गर्भ में साक्षात भगवान करने गए थे। हम कभी सोचते हैं हम भी तो माता के गर्भ में थे, हम भी तो यूं ही तड़प रहे थे, हम भी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इस बार, बस इस बार मुझे इस नरक से निकालो, मैं अवश्य तुम्हारी भक्ति करूंगा। तो वहां पर हमारी रक्षा करने के लिए कौन गया था? क्या संसार के किसी भी जीव में ये सामर्थ्य है कि गर्भस्थ शिशु की जाकर रक्षा करे? नहीं, वहां पर हमारी रक्षा करने के लिए भी साक्षात कृष्ण ही थे। बस ये अलग बात है कि परीक्षित महाराज को ये याद आ गया और उसने भगवान की कथा श्रवण करके अपने आप को भगवान के ही संरक्षण में दे दिया, भगवान का शरणागत कर दिया। हमको भी वही करना है कि यूं ही भगवान की कथाओं को श्रवण करते 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 भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना है। भगवान अवश्य हमारी भी रक्षा करेंगे, पहले भी करते आए हैं। और अवश्य भगवान कहते हैं, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको अपने धाम में लेके जाऊंगा, मोक्षयिष्यामि मा सुच, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सारे अपराधों को मैं खत्म कर दूंगा। और उसके उपरांत उद्धव जी आज श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को राज प्रदान करने के बाद भगवान ने उनसे अश्वमेध, 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। उद्धव जी कहते हैं, अयाजय धर्मसुतम अश्वमेधय स्त्रीभिर्विभु सोपीक्ष्मामनुजय रक्षन् रेमे कृष्णम अनुव्रतः। अयाजय धर्मसुतम अश्वमेधय स्त्रीभिर्विभु सोपीक्ष्मामनुजय रक्षन् रेमे कृष्णम अनुव्रतः। अया
अयाजयत धर्मसुतम। अयाजयत यानी संपन्न कराया, धर्मसुतम धर्म के पुत्र अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा। अश्वमेध है त्रिभिर विभु, अश्वमेध यज्ञ द्वारा त्रिभिर तीन, विभु परमेश्वर यानी भगवान ने। सोपि यानी महाराज युधिष्ठिर अपि भी क्ष्माम पृथ्वी को अनुजय अपने छोटे भाइयों सहित। रक्षण रेमे कृष्णम अनुव्रता, रक्षण यानी रक्षा करते हुए, रेमे यानी भोग किया, कृष्णम यानी भगवान श्री कृष्ण, अनुव्रता अर्थात निरंतर अनुगामी, वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाओं का पालन करते हुए भौतिक जगत यानी भौतिक वस्तुओं जो भूमि थी उनका भोग करते रहे अपने भाइयों के साथ। अनुवाद देखिए, भगवान ने धर्म के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को तीन अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। ये सबसे बड़ी खूबी है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि रेमे कृष्णम अनुव्रत, जीव भगवान की अनुगामी रहे, जीव भगवान निरंतर भगवान की आज्ञाओं का पालन करता रहे। तो युधिष्ठिर महाराज सदैव भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का आज्ञाओं का पालन करते थे, जैसा कि वेदों में ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली इस कार्यक्रम का तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है, जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। एक ही उद्देश्य भगवान का इस भौतिक जगत को निर्माण करने का कि जीव को पुनर् भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हो, और जो भी इस कार्य में भगवान की सहायता करता है भगवान की कृपा प्राप्त करता है, और जो इस कार्य में विघ्न डालते हैं तो वो भगवान के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। और ये जो पूरी प्रकृति है वो परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे। राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की उपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह में सुखी थे, और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त था। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। आज भी सब लोग के मन में ऐसी इच्छा आ सकती है कि पूर्ण एकाधिपत्य, एक राजा हो, सब लोग उसी राजा के अंडर में रहकर कार्य करें और इस तरह से एकाधिपत्य हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों जानते हैं? क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे, कृष्णम अनुव्रतः। तो जो एकाधिपत्य चाहता है उसे भगवान के आदेशों का पालन करना होता है, और राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी हो सकते हैं अगर वो भगवान की आदेश का आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन आज तो राजा ही भगवान के आदेश को ना समझता है ना पालन करता है, और ना ही अपनी प्रजा को ऐसा करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसीलिए राजा भी दुखी है। जो राजा भी बन जाता है, आज देखते हैं
एकाधिपति तो किसी को मिलता नहीं, लेकिन जो सामान्य राजा बन जाता है वो भी दुखी होता है और अपनी प्रजा के लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि ना उनमें सदाचार है और ना ही उनकी प्रजा के अंदर वो सदाचार के लिए कोई भावना उत्पन्न करता है। महाराज युधिष्ठिर के पूरे प्रजा में कोई भी अपराध नहीं करता, सब लोग नियमों का पालन करते थे। और महाराज युधिष्ठिर के बाद परीक्षित महाराज के समय में जब कलयुग आ गया था, उस समय भी अपराध को जगह नहीं मिल रही थी। हम जानते हैं कलयुग सोच रहा था कि मैं कहाँ जाकर स्था, मेरा युग आ गया है, लेकिन उनको कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा था। तो परीक्षित महाराज ने बोला, ठीक है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर मांसाहार किया जाता है, यहाँ पर परिस्त्री गमन किया जाता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो जहाँ पर शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है। लेकिन कलयुग ने कहा ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर ये अपराध होते हों। तो एकाधिपत्य करने का अवसर उसी को मिलता है जो भगवान के आदेशों का स्वयं भी पालन करे और अपनी प्रजा से भी कार्य ऐसा ही कार्य करवाए। विदुर जी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामांसि सेवे द्वारवत्याम् असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान विश्वात्मा भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामांसि सेवे दुर्वाच्याम् असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान अपि विश्वात्मा, वो भगवान जो समग्र सृष्टि ब्रह्मांड के परमात्मा है, जो समस्त आत्माओं की आत्मा है, लोक वेद पथानुगह, लोक विहार, वेद वैदिक सिद्धांत, पथ अनुगह अर्थात मार्ग का अनुकरण करने वाला, कामांसि सेवे दुर्वत, कामांसि अर्थात जीवन की आवश्यकता है, सी सेवे भोग किया, द्वारवत्याम यानी द्वारिकापुरी में, असक्त सांख्यम आस्थिता, असक्त अर्थात बिना आसक्ति के, सांख्यम अर्थात सांख्य दर्शन के ज्ञान में आस्थिता, आसक्त स्थित होकर भगवान द्वारिकापुरी में अपनी अनेक रानियों के साथ राज भोग कर रहे थे। द्वारिकापुरी में भोग के साथ, भोग विलास के साथ जीवन बिता रहे थे, परंतु वो सांख्य योग जो प्रणाली है उसके द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। इन भौतिक वस्तुओं को का भगवान को कोई आकर्षण नहीं था, बस भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे। अनुवाद देखिए, उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे, तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और द्वारिकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे, उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन होता है। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन की जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक विहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथा कथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी
जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप विरुद्ध ना हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है ये जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशवक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशवक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये मनुष्य जीवन जीव को इसलिए नहीं मिला है कि वो केवल अपने शरीर की मांगों को ही पूरा करते रहे, क्योंकि ये शरीर की मांगें तो पशु जीवन में भी पूरी की जाती हैं, है ना। शरीर आहार मांगता है, शरीर विश्राम मांगता है, शरीर काम वासना का भोग करना चाहता है। तो क्या वही कार्य जो पशु करते हैं उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? नहीं। सांख्य योग दर्शन में विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि मनुष्य जीवन में जीव को बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि तो अन्य जीवों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का वास्तविक ज्ञान क्या है उसके लिए मनुष्य को ही बुद्धि मिलती है, जिसमें ये जाना जा सकता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के कष्टों को समाप्त करना और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशवक जीवन से विरक्त होना है। भले ही वो ये कार्य भी करता है, आहार खाता भी है, सोता भी है, संतान उत्पत्ति करता भी है, लेकिन फिर भी ऐसे जानवरों की तरह नहीं, उसे केवल अपने शरीर की मांगों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के उद्देश्य के लिए मानव जीवन प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने वेदों का निर्माण किया। और यहाँ श्री प्रभुपाल जी ने बताया कि जीव को जब मनुष्य जीवन मिलता है तो उसे वैदिक आदेशों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसे कृष्ण तो भगवान थे ना, उनको क्या जरूरत थी किसी के अधीन रहने की। लेकिन जैसा श्री प्रभुपाद जी ने बताया और इस श्लोक से जाहिर कि वो भले ही वो त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक क्षत्र राजा कौन थे, युधिष्ठिर महाराज, तो सदैव भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन हुआ करते थे, उनके अनुसार उनसे पूछते थे बड़े भैया ऐसे करना है ये, तो उनसे पूछकर उनके अधीनस्थ में कार्य करते थे, क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहते थे कि जीव को अपने जीवन को यदि सही तरीके से गुजारना है तो उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। इसलिए जब तक वे धराधाम पर रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। और उसका कारण क्या है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन होते हैं। मार्गदर्शन यानी हमको ऐसे ही मार्गदर्शन के बगैर जीवन नहीं बिताना है, बल्कि वैदिक आदेशों के अनुसार सोच समझ कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है इस मनुष्य जीवन में भक्ति करने का अवसर प्राप्त करना। तो जब भगवान ने हमें ये अवसर दिया है तो हमें अवश्य वेदों शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए। स्निग्ध सितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण नवध्येन श्रीनिकेतेन चात्मना स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण नवध्येन श्रीनिकेतेन चात्मना स्निग्धस्य अस्मिता स्निग्धस्य यानि सौम्य स्मित अर्थात वलोक्य स्मितावलोकेन अर्थात मधु हसी से युक्त चित्वन द्वारा, यानी बहुत ही सौम्य और हंसती हुई नेत्रों से वाचा अर्थात बहुत ही सुंदर शब्दों से पीयूष कल्पया अमृत के तुल्य, चरित्रेण चरित्र से अनवध्येन मन दोष रहित श्रीनिकेतेन चात्मना श्रीमना लक्ष्मी निकेतन धाम तथा आत्मना अपने दिव्य शरीर से। अनुवाद, वे यानी कृष्ण वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रहे थे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि सांख्य दर्शन के साथ के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। श्री निकेतन अर्थात लक्ष्मी देवी के निवास, मतलब वो हमेशा उन्हीं के अंदर रहती हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। मतलब एक दफा एक जगह ये बताया जा रहा है कि भगवान सभी प्रकार से विषयों से विरक्त हैं, कोई विषय उनको स्पर्श नहीं करता, और अभी क्या बताया जा रहा है कि वो लक्ष्मी देवी के निवास है। लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी बोलते ये दोनों बातें विरोधी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंग शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति जो बहिरंगा प्रकृति है, उससे वो हमेशा भौतिक वस्तुओं की ना भगवान को इच्छा है और ना ही उनके अंदर कोई आसक्ति है, परंतु लक्ष्मी तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अल्पज्ञ हैं वे बहिरंगा तथा अंतरंग शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भगवद गीता में अंतरंग शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु को की अंतरंग शक्ति को पराशक्ति कहा गया। भगवान कहते हैं, अपरेयमितस्तन्यान् प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयति जगत। भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। जीव आत्मा भगवान हमेशा जीव आत्मा के साथ रहते हैं, कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। और ये भौतिक जगत जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उससे विरक्त रहते हैं। इस पराशक्ति का तथा इसकी विभक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.37 में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी के रूप में हुआ है। भगवान नित्य आनंदमय हैं और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले स्वाद से ज्ञात है। भगवान आनंद का स्वरूप है और भगवान दिव्य आनंद से व्याप्त, मतलब जो दिव्य आध्यात्मिक आनंद है उसका आस्वादन करते हैं, इसलिए उस आध्यात्मिक आनंद का उन्हें ज्ञान है। बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। तो यहाँ पर भक्त भी ऐसे ही हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी तो भौतिक जगत के आनंद से कितना विरक्त होते हैं। उनको भौतिक जगत के आनंद में, उन भौतिक जगत की जो बहिरंगा शक्ति है उसमें उनको तनिक भी रुचि नहीं होती है, परंतु वो हर वक्त भगवान के दिव्य आनंद में, आध्यात्मिक आनंद में निमग्न होते हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको आध्यात्मिक आनंद से विरक्त होना है, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होना है, तो आप भौतिक आनंद से विरक्ति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भौतिक आनंद से विरक्ति प्राप्त कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक आनंद जो है उसको उसका भी आनंद ना ले, बल्कि वो दिव्य आनंद तो हमारी आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंध सारी बातें दिव्य हैं। अंतरंग शक्ति की ऐसी
अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं, जिनका भौतिक प्रतिबिंब यानी छाया एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। बस भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित सारी बातें जो है वो दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं, तो उन्हीं में आनंद, जो ज्ञानी जन होते हैं उनको उन्हीं में आनंद आना चाहिए, और बाकी जो भौतिक प्रतिबिंब छाया हैं उनसे हमेशा विरक्ति होनी चाहिए, उनमें कभी आकर्षण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आकर्षण हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। ये आसक्ति, ये आकर्षण भी बड़ी अद्भुत वस्तु है भक्तों। जब ये भौतिक जगत में अर्थात बहिरंग शक्ति में लग जाता है तो जन्म मरण के चक्कर को भोगना पड़ता है, और ये आसक्ति और आकर्षण यदि भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति प्रारंभ हो जाए तो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है। एमं लोकम अमं चैव रमयन् सुतराम यधुन् रेमे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृद। एमं लोकम अमं चैव रमयन् सुतराम यदुन् रेमे क्षण दया दत्त क्षणत्री क्षणस्त्री क्षण सौहृद। शब्दार्थ, एमं लोकम उमं चैव, एमं मन यह, लोकम यानी पृथ्वी, अमुम तथा अन्य लोक, च भी एव निश्चित ही, रमयन सुतराम यदु, रमयन मतलब मनोहर, सुतराम विशेष रूप से, यदुन यानी यदुओं के, रेमे क्षण दया दत्त, रेमे अर्थात आनंद लिया, क्षण दया रात में, दत्त प्रदान किया, क्षण अर्थात विश्राम, स्त्री क्षण सौहृद, स्त्री मना स्त्रियों के साथ, क्षण मना दाम्पत्य प्रेम, सौहृद अर्थात मैत्री। अनुवाद, भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की, मैत्री का आनंद लिया। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अत्यधिक अनुरक्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पारिवारिक जनों यदुओं के साथ यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति, जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता, विशेष आसक्ति प्रदर्शित की। भगवान की ये सारी आसक्तियाँ उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं, उनकी बहिरंग शक्ति केवल छाया स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले ही भगवान हैं, भले ही संसार से विरक्त हैं, परंतु जो प्रेम और श्रद्धा के साथ उनको समर्पित करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ वो सदैव प्रेम का आदान प्रदान का आनंद प्राप्त करते हैं, और ये आनंद भगवान की अंतरंग शक्ति का ही एक स्वरूप होता है। बहिरंग शक्ति तो केवल छाया स्वरूप है। स्कंद पुराण में प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान हंस अर्थात दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियाँ 16 प्रकार की अंतरंग शक्तियों का प्रदर्शन है।
इसकी विशद व्याख्या दसम स्कंद में आएगी। इसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश हैं और अंतरंग शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर तारों के तुल्य हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो 16,000 गोपियां हैं वो भगवान की अंतरंग शक्ति की का प्रदर्शन है और जीव के लिए एक आश्वासन है कि जीव चाहे कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, यदि वो भगवान के साथ अपने प्रेम का संबंध निर्माण कर लेता है तो भगवान भी उसके साथ उसी प्रेम के आदान प्रदान के साथ उसका सहयोग देते हैं। भगवान उसी तरह से उसके साथ प्रेम करते हैं जैसा कि जीव चाहता है। तो भगवान तो सबके लिए सम है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर धाया। मुझे सब प्रिय है, सब मेरे ही तो हैं, तो सबसे मैं प्रेम करता हूँ। मेरा तो सब में एक जैसा ही भाव है। समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोस्ति न प्रिया, मेरा न कोई द्वेषी है और न ही कोई मित्र है। परंतु अत्यंत ही सुंदर उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण चंद्रमा की तरह है और गोपियां उनके चारों ओर तारों के तुल्य हैं। तो ये सब प्रसंग हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। आगे उद्धव जी कहते हैं तस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बाहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत तस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विराग समजायत तस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। शब्दार्थ तस्य एवं रममाणस्य, तस्य उसका, एवं इस प्रकार, रममाणस्य रमण करने वाले, संवत्स अर्थात वर्षों, गणान यानी अनेक, बहून यानी गृहमेदेशु अर्थात गृहस्थ जीवन में, योगेशु यौन जीवन में, विराग समजायत विरागमन अविरक्ति, समजायत अर्थात जागृत हुई। अनुवाद, इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृह जीवन में गृहस्थ जीवन में लगे रहे किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि भगवान अनेकानेक वर्षों तक ग्रस्त जीवन में लगे रहे किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते हैं किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक अनेक वर्षों तक ग्रस्त बने रहे। तो भगवान इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका ये कारण नहीं है कि भगवान जन्म मरण के चक्कर के हिसाब किताब के कारण या फिर भौतिक आसक्ति के कारण या फिर पिछले जन्मों के परिणाम के कारण वो कार्य कर रहे हैं। भगवान कुछ भी करते हैं तो केवल और केवल हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं और जो केवल इनको जान लेता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। जब वो इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो दोबारा वापिस से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। केवल जो भगवान को जान लेता है वही जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, तो मतलब भगवान कैसे फंस सकते हैं? तो ये जो भगवान गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं केवल हम जैसे गृहस्थियों को के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि समाजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया, जैसे इस श्लोक में आता है, विराग समाजायत, तो इसका मतलब होता है पहले तो भगवान ने पूर्ण समर्पण के साथ गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन फिर पूर्णतया वैराग्य प्रकट किया। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए, मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन में से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के तीन गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मणी तथा लक्ष्मी की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो पाते, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में वर्णन हुआ है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कि लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा करती। ऐसा नहीं है कि कोई समय ऐसा आता है कि भगवान लक्ष्मी को कहते हैं कि बस अब मैं विरक्ति प्राप्त करना चाहता हूं तो अब मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन इस भौतिक जगत में हम जैसे प्राणियों को शिक्षा देने के लिए भगवान ये बताते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसीलिए हमारे चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। उसमें गृहस्थ जीवन के गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, जिसमें जीव को अपने गृहस्थ जीवन को पूर्णतया त्यागना होता है, उसके बाद संन्यास आश्रम होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का ये देह नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि जीव सदैव गृहस्थ जीवन में लगा रहे और केवल ही अपने बाल बच्चों की परवरिश करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बने। कुछ समय तक के लिए गृहस्थ जीवन होता है और उसके बाद मनुष्य को अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए गृहस्थ जीवन को त्याग कर भगवत भक्ति में अपने आप को तल्लीन करना होता है और समस्त मोह माया के बंधन से छूटना होता है। इसीलिए भगवान ने ही हमारे लिए ये उदाहरण कायम किया। आगे उद्धव जी कहते हैं, दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेन भेतयोगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्वम्भेन योगेन योगेश्वरम् अनुव्रत। दैवाधीनेषु कामेषु, दैव यानी अलौकिक, अधीनेषु नियंत्रित होकर, कामेषु इंद्रिय भोग या विलास में, दैवाधीन स्वयं पुमान, दैव आधीन यानी अलौकिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित स्वयं अपने आप पुमान जीव, को विश्वम भेत योगेना, को यानी जो भी, विश्वम भेत अर्थात श्रद्धा रखता हो, योगेना भक्ति से, योगेश्वर अनुव्रता भगवान में सेवा करते हुए। अनुवाद, प्रत्येक जीव अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमयी सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से जीव के वास्तविक दिव्य आनंद के विषय में बताया गया है कि प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। हम जो भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, अलौकिक शक्ति यानी भगवान की शक्ति के द्वारा नियंत्रित है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति में नियंत्रण में रहता है। हमारी जो इंद्रिय भोग है वो भी हम स्वतंत्र नहीं, उसमें भी नियंत्रित हैं। जीव कभी भी एक्स्ट्रा इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। जैसे किसी को खाने का शौक है तो कितना खाएगा, 2 रोटी 4 रोटी, उससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा। हो सकता है कोई 10 रोटी 20 रोटी भी खाए, लेकिन एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं को अनलिमिटेड कर सकता है। उसी तरह से कोई भी इंद्रिय भोग हो, कोई काम वासना की इच्छा हो, कोई अनलिमिटेड टाइम तक नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि उसकी जो इंद्रिय तृप्ति है वो भी अलौकिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ इसीलिए कृष्ण की दिव्य इंद्रिय कालकर पर जो ये समझता है वही भगवान के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों को में अपनी श्रद्धा टिका सकता है, जो कि भगवान की सेवा करता है, भगवान का भक्त बन चुका है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो इस बात को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के दिव्य जन तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। को विश्रम्भेन योगेन योगेश्वर अनुव्रत। हर किसी के बस की बात नहीं कि वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को समझ सके। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों को के अंतर को समझ सकता है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ और उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ, ज्ञान दीपे न भास्वता। भगवान ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम हर एक वस्तु को बहुत ही प्रत्यक्ष तरीके से समझ सकते। भगवान कहते हैं तेषामिवानो कंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः। आज प्रत्येक जीव अज्ञान के द्वारा ग्रस्त है, लेकिन जब जीव भगवान के पवित्र नाम का सुमिरन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तभी उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को और भगवान को भी समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या देवी माया कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रकृति या दैवी माया यही है कि हर एक जीव हो या मनुष्य हो या पशु हो, वो भगवान के नियंत्रण में है। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा है। ऐसे लोग को स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। तो ये तो केवल एक भक्त ही समझ सकता है कि भगवान पूरा का पूरा दिव्य है। भगवान में देही और आत्मा का कोई भेद नहीं है। जिस तरह हमारे पास शरीर है और उसके अंदर आत्मा है जो कि बहुत ही छोटी सी है, बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है, परंतु भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं और भगवान अपने किसी भी कार्य के लिए किसी के नियंत्रण के अधीन नहीं है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बताया गया, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया जाता है कि पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति श्रीराम जगन्ति, कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे मनुष्य यदि चाहे कि वो आँखों से खाए तो वो नहीं खा सकता, उसे आँखों से केवल देखना है और मुख से खाना है, लेकिन भगवान तो केवल आँखों से भी खा सकते हैं। केवल आँखों से भी वो पृथ्वी को गर्भस्थ कर सकते हैं। जैसे ही वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। इसका जीव
जिसका इंद्रियां सीमित हैं उसे विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, है ना, ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं किसी और इंद्रिय से कोई और कार्य करूं। किंतु भक्ति योग के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावान् यस्यामि तत्त्वतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं समझ सकता। तो भगवान भगवत गीता में साफ साफ बताते हैं, नमे विदो सुरगणाः प्रभवम ना महर्षः, ना मुझे देवता जान सकते हैं, ना ही प्रभव, ना ही महर्षि जान सकते हैं। तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को, भगवान के कार्यकलापों को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो भगवान की किसी भी कार्य को ना समझ सकते हैं और ना ही अपने हृदय में भगवान के लिए सुप्त प्रेम को जागृत कर सकते हैं। इसलिए भले उसके अंदर तीव्रता आए या ना आए, भले ही हम अच्छे से वो भक्ति कर सकें या ना कर सकें, हृदय में एक इच्छा तो सदैव होनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। एक बार जब ये इच्छा हृदय में हो जाएगी तो निश्चित रूप से भौतिक कार्यों से अपने आप को विरक्त करके जीव भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। और बढ़ना भी नहीं है, भगवान ने तो कहा, सन्मुख होए जीव जब मोहि जबहि, खाली तुम मेरी ओर देखो बस, कृपा मैं करूँगा, एक कदम तुम बढ़ाओगे। और कोई तो कहते हैं कि 10 कदम भगवान चल के आएंगे, लेकिन 10 कदम चल के नहीं आएंगे, बाकी सारा का सारा सफर वो पूरा खुद ही करेंगे। खाली हमें एक कदम भगवान की ओर बढ़ना है, भगवान अवश्य हमारा आगे आकर हाथ पकड़ लेंगे। और भक्ति के द्वारा हम भगवान को ना केवल ज्ञातुम दृष्टुम प्राप्त परवेष्टम, उसको ना केवल देख सकते हैं, उनको जान भी सकते हैं और उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि वही अनन्य भक्ति हम सबको प्रदान करे ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूँ। हरे कृष्ण।